समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार
सभी श्रोताओं को हनुमान जयंती की
हार्दिक शुभकामनाएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी शति लोक उजागर, राम दूता तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र सुखनामा, महावीर विक्रम चरंती, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेजा, कानन कुंडल कुंचित केसा। Today, the entire country is celebrating Hanuman Janmotsav. Often we call this day as Hanuman Jayanti, but Jayanti is used for birth anniversaries. And as we all know very well that Hanumanji is immortal. He is one of the few people who are immortal according to Hindu scriptures. Lord Hanuman is one of the most beloved for his devotees and is known to bless people with strength, courage, success in life, resilience and more. It is said that Lord Hanuman is the only god who is a devotee before being a god, a devotee of Lord Ram.
स्टूडियो की घड़ी में 4:31:40 हुए हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओ, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी करेंगे हम याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्म दिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
आपको भी मेरा नमस्कार मनोज। यू ऑल द लिसनर्स आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड फॉर ऑल ऑफ यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दीज टिल 5 PM। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। सेना ने अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम किया।
3 माओइस्ट्स किल्ड इन एन एनकाउंटर विद सिक्योरिटी फोर्सेस इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़।
गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि पर महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
हनुमान जन्मोत्सव इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विद रिलीजियस फर्वर।
अमेरिका ने विदेशी नागरिकों को 30 दिन के भीतर एलियन एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण कराने का आदेश जारी किया, पालन न करने पर गिरफ्तार कर निर्वासित करने का प्रावधान।
एंड इन IPL क्रिकेट, पंजाब किंग्स टू टेक ऑन सनराइजर्स हैदराबाद इन हैदराबाद दिस इवनिंग। And now, time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we will talk about International Day of Human Space Flight and also Hanuman Janmotsav.
जी तन्वी, आज देश के विभिन्न भागों में हनुमान जयंती धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। ये दिन भगवान हनुमान के जन्म का स्मरण कराता है।
In the national capital, devotees are thronging the Hanuman temples since early morning to offer prayers. Heavy rush of people is being seen at the Prachin Hanuman temple at Connaught Place in New Delhi. Hanuman Chalisa, Sundar Kand and Akhand Ramayan are being recited at the temples on this occasion.
Uttar Pradesh mein Hanuman mandiron mein badi sankhya mein shraddhalu umde hain. अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में भी इस अवसर पर लोगों की लंबी कतार देखी जा सकती है। कई स्थानों पर भंडारा भोज का भी आयोजन किया गया है।
Many devotees also took a holy dip in the Saryu River and visited the Ram Temple as part of their spiritual journey. The atmosphere was filled with devotion with chants of Jai Bajrang Bali echoing through the temple premises.
वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। शहर में कई स्थानों पर सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए अयोध्या और वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
Prime Minister Narendra Modi has extended wishes to countrymen on this special day today. In a social media post, the Prime Minister said that with the blessings of Sankat Mochan Lord Hanuman, may all people remain healthy, happy and prosperous in life.
चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पर आज अयोध्या में धार्मिक श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्ण वातावरण में प्रातःकाल दक्षिण परंपरा पर आधारित काले राम मंदिर में हनुमान जी की जयंती मनाई गई। जानकी महल ट्रस्ट सहित अन्य मंदिरों में जयंती मनाई जा रही है। इसके लिए हनुमान मंदिरों को आकर्षक रूप में सजाया गया है। हनुमान जयंती के कारण और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे अयोध्या संवाददाता।
हनुमान जयंती पर आज अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। ब्रह्मोत्सव से ही भक्तों ने पावन शैला सरयू में स्नान करके ऐतिहासिक हनुमान गढ़ी, कनक भवन, नागेश्वर नाथ और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। अयोध्या के राजा के रूप में स्थापित हनुमान जी की जयंती पर आज मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेष रूप से दक्षिण परंपरा पर आधारित काले राम मंदिर में भगवान हनुमान जी का अभिषेक करके पूजा आरती की गई और नारदीय संकीर्तन के साथ ही एक भंडारे का आयोजन किया गया। इस मंदिर में काले कसौटी पर उत्कीर्ण हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है, जो कि भगवती का स्वरूप है, जिनके हाथ में गदा की जगह कटार मौजूद है। उनका यह स्वरूप अहिरावण वध के समय ही प्रत्यक्ष हुआ था। कहते हैं कि जब अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले गया था तो वहां उनकी बलि चढ़ाना चाहता था। ऐसी मंशा के साथ ही देवी उपासना करके बलि चढ़ाने के पहले भगवान राम से कहा कि हम आपकी बलि चढ़ाना चाहते हैं, आप अपने इष्ट को याद कर लीजिए। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण ने हनुमान जी का स्मरण किया तो हनुमान जी सामने मौजूद देवी जी की प्रतिमा में ही प्रवेश करके प्रकट हो गए और अहिरावण का वध किया। तभी से आज के दिन अयोध्या के काले राम मंदिर, जानकी महल ट्रस्ट सहित प्रमुख मंदिरों, वाराणसी के संकट मोचन और राजस्थान प्रदेश के बालासार स्थित मेहंदी बालाजी मंदिर के साथ साथ संपूर्ण दक्षिण भारत के मंदिरों में हनुमान जयंती मनाई जाती है। परिक्रमा के लिए अयोध्या से तन्मय सोनी।
12th of April, that is International Day of Human Space Flight. We have a quote, "Nothing will stop us. The road to the stars is steep and dangerous, but we are not afraid. Space flights can't be stopped. This isn't the work of one man or even a group of men. It is a historical process which mankind is carrying out in accordance with the natural laws of human development." This is a quote by Yuri Gagarin.
ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति बनना अकेले ही प्रकृति के साथ अभूतपूर्व द्वंद में शामिल होना, क्या कोई इससे अधिक कुछ सपना देख सकता है? यूरी गगारिन ने ये बात कही।
Well, if you are wondering why are we remembering Yuri Gagarin, let me tell you that the General Assembly in its resolution declared 12th of April as the International Day of Human Space Flight. This was done to celebrate each year the beginning of the space era for mankind, reaffirming the important contribution of space science and technology in achieving sustainable development goals and increasing the well-being of states and peoples, as well as ensuring the realization of their aspiration to maintain outer space for peaceful purposes.
जैसे जैसे मनुष्य तकनीकी प्रगति करता जा रहा है, पृथ्वी से परे क्या है, इस बारे में हमारी जिज्ञासा और भी मजबूत होती जा रही है। इसने अंततः मानव इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की, अंतरिक्ष अन्वेषण। अंतरिक्ष यात्रा ने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया, जिसने हमारी दुनिया से परे पहुंचने और अज्ञात की खोज करने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित किया।
Well, if you all, our listeners, are curious why this particular date, then let me tell you that 12th of April 1961 was the date of the first human space flight carried out by Yuri Gagarin, a Soviet citizen.
उन्होंने अंतरिक्ष यान वोस्तोक एक पर सवार होकर एक बार पृथ्वी की परिक्रमा की, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। गगारिन का मिशन लगभग 108 मिनट तक चला, जिसके दौरान उन्होंने पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी की।
This historic event opened the way for space exploration for the benefit of all humanity. Gagarin's journey into space had a profound impact on the global perception of space exploration. It inspired a new era of scientific discovery and fueled the space race. Did you know that Gagarin's famous words upon entering space were "Pohe Khali," which translates to "Let's go" in English. This phrase has become iconic in the history of space exploration.
महासभा ने बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग को बढ़ावा देने और विस्तार देने में मानव जाति के साझा हित के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की, क्योंकि ये समस्त मानव जाति का क्षेत्र है तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए तथा इससे प्राप्त होने वाले लाभों को सभी राज्यों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने में भी विश्वास व्यक्त किया.
After Gagarin's 1961 flight, space missions involving human crews carried out a range of significant research, from on-site geologic investigations to the moon to a wide variety of observations and experiments aboard orbiting spacecraft.
खास तौर पर प्रयोगकर्ताओं के रूप में और कुछ मामलों में प्रायोगिक विषयों के रूप में अंतरिक्ष में मनुष्यों की मौजूदगी ने बायोमेडिसिन और मैटेरियल साइंस में अध्ययन को सुविधाजनक बनाया. अंतरिक्ष में वैज्ञानिक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के परिणामों को प्रभावित किए बिना भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसी चीजों का अध्ययन कर सकते हैं. इससे उन्हें ऐसी खोज करने में मदद मिलती है जो उद्योगों को लाभ पहुंचा सकती है और सभी के लिए जीवन को बेहतर बना सकती है.
And as we celebrate International Day of Human Space Flight, we must also look forward to the future with optimism and ambition. The rapid advancements in space technology and the growing interest in space tourism and colonization herald a new era of exploration and discovery.
मंगल ग्रह और उससे आगे के मिशनों से लेकर अंतरिक्ष आवासों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास तक मानव अंतरिक्ष उड़ान की संभावनाएं अनंत है. अंतरिक्ष अन्वेषण के माध्यम से हम पृथ्वी और सौर मंडल का अध्ययन करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं.
Yes, we advance new technologies that improve our daily lives and we inspire a new generation of artists, thinkers, engineers and also scientists.
ये दिन न केवल अतीत की उपलब्धियों का जश्न मनाने का समय है बल्कि भविष्य के लिए कार्रवाई का आह्वान भी है. जैसा कि हम यूरी, गगारिन और अंतरिक्ष अन्वेषण के अग्रदूतों की उल्लेखनीय यात्रा पर विचार करते हैं, आइए हम बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें.
By fostering scientific curiosity, promoting international cooperation and embracing the spirit of exploration, we can unlock the mysteries of the universe and chart a course towards a brighter future for all humanity.
ये महत्वाकांक्षी मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान में सक्षम देशों के विशिष्ट समूह में प्रवेश करने का प्रतीक है.
The exploration of space will inspire future generations, children and young adults growing up in a world touched by the wonders of space exploration and human space flight are far more likely to be captivated by fields like science, technology, engineering and mathematics, that is STEM.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
Department of Tourism, Union Territory of Ladakh is organizing Apricot Blossom Festival 2025 in selected apricot belt villages across Ladakh. A series of events are going to take place in all the selected villages till 4th of May. This festival is a new event introduced in the tourism calendar of Ladakh in the spring season to promote rural tourism as well as ecotourism in the region. Our Leh correspondent has filed a report.
Ladakh Apricot Blossom Festival 2025 commenced from 10th April at village Kurbuchen district Leh with a grand opening attracting not only the local population but tourists across the country who witnessed the first event of the festival. A series of activities were organized during the day-long event promoting the local artisans, local Ladakhi cuisine, folk and dances, tourism and handicraft in a serene environment. Indian army posted near the village also joined the festival and boosted the morale of locals by facilitating the locals for their contribution in the victory of Kargil War 1999. The Apricot Blossom Festival in Ladakh is inspired from the Cherry Blossom Festival of Meghalaya to celebrate the spring season to attract the tourists and make Ladakh another attractive feature of the tourism season so that it is extended tourist season around the year. In Kargil district, the festival season started from the village Sanjak and was inaugurated yesterday on 11 April in a grand manner showcasing the rich cultural heritage and promoting the local cuisine. The celebration were organized in an open field surrounded by apricot flowers, which added to the beauty of the festival. For Parikrama, this is Yangchan Dolma from Leh Ladakh.
हर घर शुद्ध जल पहुंचाने के केंद्र सरकार के प्रयास में उत्तर प्रदेश ने सफलता की बड़ी कहानी लिखते हुए एक और छलांग लगाई है। यूपी के 24,576 गांव ऐसे हो गए जहां 100% घरों में नल से शुद्ध जल पहुंच गया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
गांव में लोगों को घर में शुद्ध जल मिले, इसके लिए सरकार की हर घर जल योजना में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने गंभीरता से प्रयास किए हैं। बुंदेलखंड जैसे पानी के लिए तरसने वाले क्षेत्रों के गांव में भी अब नल के जरिए पानी लोगों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार का यही प्रयास है कि हर घर शुद्ध जल पहुंचे, इसके लिए सरकार के साथ ही अधिकारी और आम जनमानस का भी सहयोग मिल रहा है।
नल के माध्यम से शुद्ध जल देने का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में राज्य के मंत्रीगण और सभी अधिकारी परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, सभी को शुद्ध पानी पहुंचे। जैसे गोरखपुर में बीमारी खत्म हुई दिमागी बुखार से स्वच्छता और पानी के खराबी के कारण, इसी तरह राज्य के अंदर प्रत्येक गरीब के घर पर नल हो, अपना शुद्ध पानी हो और उसको बीमार भी न हो, और उस नल की चिंता स्वयं घर वाले और ग्रामीण करें, अधिकारी भी चिंता करेंगे। आप विश्वास रखिए, शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी सीधे घर तक पहुंचेगा, यानी पानी में उसके घर पर स्वच्छ पानी और शुद्ध पानी पहुंचे, इसके लिए गंभीरता से सरकार ने लिया है।
इतना ही नहीं, हर गांव में ग्रामीण जलापूर्ति व नमामि गंगे विभाग की तरफ से 18 लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। हर गांव में 5 महिलाएं FHTC कनेक्शन का कार्य कर रही हैं, जबकि प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन के रूप में स्किल ट्रेनिंग कर 13 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि हर घर शुद्ध जल पहुंचे, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और उन्हें पेयजल के लिए भटकना न पड़े। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी लखनऊ से शैलेंद्र शर्मा।
वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ विल इनॉग्रेट द 3-डे कल्चरल फेस्टिवल नेम्ड विक्रमोत्सव ऑफ मध्य प्रदेश एट द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली टुडे। विक्रमोत्सव विल कंक्लूड ऑन 14th ऑफ अप्रैल। ड्यूरिंग द कल्चरल फेस्टिवल अ प्ले बेस्ड ऑन सम्राट विक्रमादित्य विल ऑल्सो बी स्टेज्ड। द प्ले फोकसेस ऑन द ग्लोरियस हिस्ट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एम्परर विक्रमादित्य। Along with the play, exhibitions are also being organized at the Red Fort, focusing on the subjects like Vikramaditya and Ayodhya, cultural splendor during Vikramaditya era, tourism possibilities in Madhya Pradesh, and investment and employment generation opportunities in the state.
Rashtriya Rajdhani Kshetr mein sthit हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम भारत की विविध परिवहन विरासत को प्रदर्शित और संरक्षित कर रहा है। ये म्यूजियम एक आकर्षक और शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए बनाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये म्यूजियम भारतीय परिवहन में इतिहास, संस्कृति और नवाचार को प्रदर्शित करता है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
The Heritage Transport Museum is India's first comprehensive transport museum. Situated in Gurugram, Haryana, the museum offers vivid and immersive exploration of the history and evolution of transport of the country. Started in 2013, the museum's extensive collection is categorized into various sections including pre-mechanized and heavy mechanized transportation, railways, aviation, maritime, rural and indigenous transport, two-wheelers, collectible Indian transport themed toys, and popular and tribal art. Showcasing over 3,500 curated objects, the museum brings to life the diverse narratives of India's transport heritage, not only to vehicles but also through associated memorabilia and cultural artifacts. It is spread over 1 lakh square feet of exhibition space, a library and reference center, a mini auditorium, a museum souvenir shop, seminar rooms and a refreshment area. With Saklayan Akhtar for Parikrama, Bhanu Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। प्रतियोगिता में कल रात चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया।
In the Indian Super League football final, Mohun Bagan Super Giant will face Bengaluru FC at the Vivekananda Yuva Bharati Kridangan in Kolkata today. The match will begin at 7:30 p.m. Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember martyrs Bholo and Molo, who participated in the Bhil Girasia tribal uprising of 1922 in erstwhile Sirohi state. They were martyred while fighting against the British troops on 12th of April 1922.
Bholo and Molo participated in the Ekki movement that was launched to counter the harassment of tribals by the state officials. The movement sought to redress the grievances of tribals regarding the high rate of revenues and forced labor in the Sirohi state. The Bhils of Rohira and the Girasias of Chandela, Girvar and the neighboring villages of Siava defied the orders by carrying away crops from their fields without paying the state's dues.
Hearing the news of the tribal gathering, the state army and 200 soldiers of the British army, led by Major Richards, reached the spot and opened fire on the agitators on 12th of April 1922 without any prior warning of dispersal. In the indiscriminate firing, Bholo and Molo and several other Girasia agitators were killed. Simultaneously with this firing, the village was looted and set on fire by the troops. We salute the great martyrs. We also remember the nationalist historian Rakhal Das Bandopadhyay, who was born on 12th of April 1885 in Murshidabad district, West Bengal. He is best known as the discoverer of the antiquity of Mohenjo-daro, the principal site of the Indus Valley civilization, through excavations.
Rakhal Das worked at the Indian Museum, Calcutta, the Archaeological Survey of India and the Banaras Hindu University. Rakhal Das was a nationalist historian with a broad view of Indian civilization. Contributions of Rakhal Das in the fields of paleography and epigraphy are indeed great. His work, The Origin of the Bengali Script, was a pioneer attempt at tracing the development of Bangla script on the basis of inscriptions and manuscripts.
He also worked in the field of numismatics, giving a scientific account and critical analysis of the coins of ancient and early medieval India.
Bandopadhyay is popular for unearthing pre-Buddhist artifacts at the ruins of Mohenjo-daro and for noting similarities between the site at Mohenjo-daro and Harappa.
His interpretations and analysis about the civilization were published in a number of articles and books, such as An Indian City 5,000 Years Ago, Mohenjo-daro in Bangla, and Mohenjo-daro, A Forgotten Report. He also wrote many historical fictions.
Rakhal Das also worked on the ancient and early medieval sculptures and structural remains of Assam and discovered carvings of door jambs of a ruined temple at Dah Parvatiya near Tejpur.
Till his untimely death at the age of 45 years on 23rd of May 1930, Rakhal Das continued to work for unearthing the historical wonders of India. We salute the great nationalist.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्म दिवस। आज भारतीय रंगमंच, फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री उत्तरा बावकर की पुण्यतिथि है। गोविंद निहलानी की फिल्म तमस में अपने अभिनय के बाद उत्तरा बावकर सुर्खियों में आई थी। इसके अलावा उन्होंने उड़ान, अंतराल, रिश्ते, कोरा कागज, नजराना, जस्सी जैसी कोई नहीं और जब लव हुआ जैसे कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अभिनय की बारीकियां सीखने वाली उत्तरा बावकर ने मुख्यमंत्री में पद्मावती, मीना गुर्जरी में मीना, शेक्सपियर के ओथेलो में डेस्टिमोना और नाटककार गिरीश कर्नाड के नाटक तुगलक में मां की भूमिका के अलावा विभिन्न लोकप्रिय नाटकों में यादगार किरदार निभाया था।
गाना हमको अपने किसी प्ले का सुना।
देखिए, अब प्रैक्टिस नहीं है, गला नहीं चलता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। ये थ्री पेनी ओपेरा में मैंने गाया था, तो मैं अभी तो मैं गुनगुनाती हूँ। पॉली नाम का जो कैरेक्टर था,
पॉली
पीचम जो मैंने किया था, तो कुछ ऐसे शुरू होता है। जब मैं लड़की थी भोली भाली, मैंने सोचा मुझ में ले कोई दिलचस्पी, उस हालत में सोचा करती थी ये मेरे दिल मैं क्या करूंगी, ये मेरे दिल मैं क्या करूंगी।
Today is the birthday of David Letterman, born on 12th of April 1947. He is an American television host, comedian, writer, producer, and also auto racing team owner. He hosted late night television talk shows for 33 years, beginning with 1st of February 1982 with the debut of Late Night with David Letterman and ending with 20th of May 2015 with Late Show with David Letterman. So in total, this man hosted 6,080 episodes of both the talk shows, which is a great achievement.
आज हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार गुलशन बावरा की जयंती है। उनका मूल नाम गुलशन कुमार मेहता था। उन्हें बावरा का उपनाम फिल्म वितरक शांति भाई पटेल ने दिया था। अपनी साहित्यिक सोच के कारण ही गुलशन बावरा फिल्म संगीत से जुड़े थे। वे पहले रेलवे में कार्यरत थे, लेकिन उनकी कल्पना की उड़ान ने उन्हें फिल्म उद्योग के आसमान पर स्थापित कर दिया, जहाँ उनका योगदान ध्रुव तारे के समान अटल और अविस्मरणीय है। अक्सर पंजाब से आई गेहूं से लदी बोरियां देखा करते थे और वहीं उनके मन में कभी ना भुलाई जा सकने वाली वे पंक्तियां बन पड़ी जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गई, मेरे देश की धरती सोना उगले।
It's also the birthday of Bijoy Namvyar, born in 1979, an Indian film director and screenwriter. He's known for multiple films that he has directed, be it Shaitan, Wazir and many more, and he has written the screenplay of the film Karwaan. So let's hear the song from the film Wazir titled Tere Bin.
Tere Bin
आज भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और हिंदी फिल्मों के गीतकार केदार शर्मा की जयंती है। उन्हें बॉलीवुड में ऐसे फिल्मकार के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने राज कपूर, भारत भूषण, मधुबाला, माला सिन्हा और तनुजा को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केदार शर्मा ने कई फिल्मों में अपने अभिनय से भी दर्शकों का दिल जीता। इन फिल्मों में इनकलाब, पुजारिन, विद्यापति, बड़ी दीदी, नेकी और बदी शामिल है।
दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
Today we are remembering Rana Sangha, and he was the Maharana of Mewar from 1508 to 1528 CE. A member of the Sisodia dynasty, he controlled parts of present-day Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Haryana, Sindh and Uttar Pradesh with his capital at Chittorgarh. So these were the great people whom we are remembering today on this special day, which is 12th of April.
आज जन्म दिवस है भारतीय शास्त्रीय गायक ऋत्विक सान्याल का। प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल ध्रुपद गायन के सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने 60 के दशक में लुप्त गायन शैली को एक नई ऊंचाई प्रदान की। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए मनोज और तन्वी खुराना को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
नमस्कार।